તારીખ 26/9/1998 શ્રી મદરાજચંદ્ર પત્રાંક 569 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 723
પત્રાંક 569 ચાલતા હૈ આત્મજ્ઞાન जितना मजबूत होता है प्रगाढ़ होता है उतनी शांति भी ज्यादा होती है। वो बात आखिर में चली थी। अब कहते हैं कि किसी भी तथारूप योग को प्राप्त होकर के जीव को एक क्षण भी अंतर्भिद जागृति होवे तो उसे मोक्ष अधिक दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। क्या कहते हैं कि इस संसार में जीव को परिभ्रमण करते हुए अनंत काल गया। 84 लाख योनि में जन्म लिया, नया नया देह धारण किया, आयुष पूरा किया, फिर नया देह धारण किया। जन्म लेते वक्त बहुत पीड़ा होती है, मृत्यु के काल में भी बहुत दुख होता है, प्राण छूटता है तो, और जिंदगी में भी अनेक प्रकार की आपत्तियां, विपत्तियां, बाधाएं, पीड़ाएं, भय, अनेक प्रकार के दुख संसार में होते हैं। उन सब से बचने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात किया है कि अगर किसी जीव को ऐसे दुखों से छूटने का भाव होता है, वो भाव कैसा होता है कि बस अब छूटना ही है, जैसे कैसे भी छूटना ही है, ऐसे दुख बार बार अभी नहीं भोगना है। क्यों? बेबस होकर के भोगना पड़ता है। रोग आ पड़ता है तो अपना बस नहीं चलता, मृत्यु में भी अपना बस नहीं चलता। ऐसे किसी भी परिस्थिति में कोई अपनी इच्छा के अनुसार कोई दुख होता है ऐसा तो बनता नहीं। इच्छा विरुद्ध दुख आ पड़ता है ऐसा प्रत्यक्ष तौर से देखने में आता है। कोई चाहते नहीं है कि हम दुखी हो, फिर भी होता तो है। जब इस जीव को एक तीव्र भावना होती है कि जैसे कैसे भी किसी कीमत पे भी अगर इसका इलाज मिलता है तो हमको करना ही है, ऐसी परिस्थिति में कोई इस विषय का अनुभवी पुरुष मिलता है, इस मार्ग का अनुभव अनुभवी एक्सपीरियंस्ड मिलता है, दो बात एक साथ जब हो जाती है तब कोई एक बात नहीं बनती है। इसकी बात कर रहे हैं। कभी जीव की इच्छा हुई है मुक्त होने की, उनको मुक्त कैसे मुक्त हुआ जाए दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला तो रास्ता भूल गया। कभी कभी दिखाने वाला मिला तो खुद की इच्छा नहीं थी ऐसा बना तो उसने बात सुनी नहीं, या सुनी तो अनसुनी कर ली या निग्लेक्ट कर ली। इसलिए बहुत काल बीता। जब दोनों साथ दोनों बात साथ में होती है तो किसी एक क्षण ऐसी आ जाती है कोई एक क्षण ऐसे आ जाती है कि जीव को आत्महित के लिए एक अपूर्व जागृति पैदा हो जाती है। जागृति मैंने सावधानी, खुद अपने सुख दुख के विषय में बहुत अलर्ट हो जाता है, सावधान हो जाता है। ऐसी एक परिस्थिति पैदा हो जाती है, किसी एक क्षण से ऐसा होता है। जब से ऐसा होता है, ज्ञानी कहते हैं कि ऐसे ऐसा जिसको हुआ नहीं है, इसका मुख ज्यादा दूर नहीं है, उसका मुख नजदीक के भविष्य में होने वाला है। ये आत्म जागृति है, ये मोक्ष का सिग्निफिकेंस है, सिग्नल है, ऐसा यहाँ पर बता दिया है। अब देखो क्या करना पड़ा, अब हम उस पर विचार करते हैं कि जीव को क्या करना पड़ा। कुछ समर्पण करना पड़ा, कुछ लेना देना हुआ, या कुछ भूखा रहना पड़ा, क्या करना पड़ा? उनको तो अपने दुख से छूटने की तीव्र इच्छा हुई बस, तो इसमें क्या अनुचित हुआ? दुख से छूटने की इच्छा तो सबों की होती है, लेकिन ऊपर ऊपर की होती है तो उसमें कोई जोर नहीं होता, तो फिर दूसरे दूसरे काम में लग जाते हैं। क्योंकि संसार में सांसारिक समस्या भी बहुत सी है, मनुष्य को अनेक प्रकार के अपने अपने प्रॉब्लम आते हैं, तो ये बात रह जाती है। जब सभी प्रकार के दुख से मुक्त होने की तीव्र इच्छा होती है, तब दूसरी अनुकूल प्रतिकूलता वाली सब बातें गौण हो जाती हैं। बात रही मुख्य गौणता की, बात रही मुख्य गौणता की। जब ये चीज मुख्य होती है, तब और सब चीज गौण हो जाती है, और तब एक अपूर्व जागृति आती है, बहुत सावधानी आ जाती है, और उनके परिणाम जो है वो अनुकूलता प्रतिकूलता में उतने फिर खींचते नहीं है। सभी प्रकार के प्रसंग में जीव तनाव मुक्त हो जाता है, तो आंशिक मुक्ति तो वहां से ही चालू हो गई कि नहीं होगी, हुई कि नहीं हुई? जब छोटे मोटे प्रसंग में कभी गुस्सा आता है, तो कभी टेंशन आता है, कई प्रकार के द्वेष आते हैं, क्यों, कई बातें होती हैं, इस लाइन में एक क्षण ऐसी आ जाती है इस भावना के कारण से, मुक्त होने की तीव्र भावना के कारण से ऐसी एक क्षण आ जाती है कि जब से जागृति बहुत रहती है, और जागृति के कारण से सब गौण हो जाता है। मुझे खुद को अशांति में जाना नहीं, और कोई भी बात बनती है तो मेरे वो अशांति का कारण नहीं बन सकते, मेरी अशांति का कारण वो नहीं बन सकते। दृष्टांत ले लेते कि मनुष्य भाव में मान प्रकृति तीव्र रहती है। क्या मान प्रकृति इतनी तीव्र हो जाती है कभी कभी कि जीव लोभ को गौण कर देता है, पैसा खर्च करके अपना मान नहीं बनाना चाहते, अपना नाम नहीं बनाना चाहते, पैसा दे करके वो खुदवाते हैं, तख्ती लगाते हैं, लिखवाते हैं कि नहीं लिखवाते हैं, तो लोभ तो गौण हो गया, वहां मान मुख्य हो गया। मनुष्य भाव की मनुष्यों की एक मानव स्वभाव की एक मुख्य प्रकृति है मान इज्जत आबरू। अगर मान को धक्का पहुंचता है इज्जत को धक्का पहुंचता है तो बर्दाश्त नहीं कर सकते मनुष्य। फिर भी जिसको आत्म जागृति होती है उनको टेंशन नहीं आता। कैसे? किस आधार से? कि जो देखता है मुझे वो फलाना फलाना है, ये तो मेरे शरीर को देखता है, मेरी आत्मा को तो देखता ही नहीं। और जिसको देखता है वो तो मैं हूं नहीं, और मुझे वो देख पाता नहीं क्योंकि मैं तो और भी हूं, इसके पास वो ज्ञान नहीं है मुझे देखने का। दूसरा कि इनके भाव इनके आकुलता के इनके दुख के कारण है। जो भी अपमान करता है या निंदा करता है या कुछ भी करता है तो इनके भाव है वो इनको दुख के कारण है। इसके कारण से मैं क्यों दुखी हूं? हाँ वो तो है ही, पर अपने कोई पूर्व कर्म का उदय है वहां उसके खाता चुकती होता है। जो कर्ज किया है वो कर्ज वही साफ कर देता है अगला, अपने को कुछ देना ही नहीं पड़ता। हाँ बात है कि अपने को शांति रखनी होती है, शांति रहती है वही बस बात पूर्ति है। इसके लिए पूर्व कर्म के उदय को खत्म करने के लिए अगर हम शांति रखते हैं संभाव में रहते हैं तो उदय खत्म हो जाता है, और अगर हम गर्म नरम होते हैं तो नया फिर यही प्रकार का उदय आने का एक नया कर्म बंध हो जाता है जो भविष्य में उदय में होकर के वही प्रसंग को खड़ा कर देगा। तो सही ज्ञान होने से परिस्थितियों का चारों पड़खों से सही ज्ञान होने से सहज शांति बनी रहती है। उसी को कहते हैं अंतर भेद जागृति। ऐसी कोई अपूर्व जागृति है कि खुद को मालूम पड़ जाती है कि ऐसी जागृति कभी इस जीव को आई नहीं। मैं मेरे सुख दुख के विषय में इतना कभी ध्यान दिया ही नहीं, इतना अभी मेरा ज्ञान जागृत हो गया है, अब मुझे कोई आपत्ति होने वाली है ही नहीं। इस तरह से जब परिस्थिति चालू हो जाती है तो ज्ञानी कहते हैं कि इसके लिए मोक्ष भी ज्यादा दूर नहीं है, बहुत अल्प भविष्य में, अल्पकाल के भविष्य में उसका मुक्ति हो जाएगी, वो निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। अब कहते हैं कि मोक्ष किसको दूर है? तो ऐसे जीव को दूर नहीं है कि अन्य परिणाम में जितनी तादात्म वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर है। अन्य परिणाम मैंने विभाव परिणाम, विकारी परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह आदि अनेक प्रकार के जो भाव है वो अन्य परिणाम है, आत्म परिणाम नहीं है। आत्म परिणाम तो ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, आनंद आदि है। ये तो विभाव है, विकृत भाव है, वो अन्य भाव है, अन्य परिणाम है। उसमें तन्मयता जितनी होती है उसमें रस आता है, तीव्रता आती है, एकाग्रता होती है, लीनता होती है, उतना मोक्ष ज्यादा दूर है। क्योंकि उसमें वो बंध गया, वो भाव बंद है, उसमें जीव पूरा पूरा रुक जाता है, उसका रुकावट वहीं हो जाता है, वही भाव बंद है, और वो बंद है वो मोक्ष से प्रतिपक्ष है, मोक्ष से दूर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको मोक्ष दूर नहीं है उसको अन्य भाव में तादात्म वृत्ति आत्म जागृति के कारण से नहीं। फिर से उसको स्पष्ट करें कि विभाव परिणाम तो ज्ञानी को भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें तन्मयता, उसमें लीनता, उसमें तादात्म्य वृत्ति, उसमें एकाग्रता, उसमें रस नहीं आता है, इसलिए मोक्ष से समीप है। और जिसको रस आता है, लीनता हो जाती है, तन्मयता हो जाती है, उसको मोक्ष दूर है। तो ये जो जागृति है ज्ञान की, वो रस नहीं उत्पन्न करने देती, परिणाम तो थोड़ा बहुत हो जाता है लेकिन उतना रस नहीं आता, क्योंकि जो ज्ञानी गृहस्थ अवस्था में ज्ञान प्राप्त करता है, उनको पूर्व कर्म उदय में जो आते हैं, वो पूर्व कर्म उसने अज्ञान अवस्था में बांधे थे। जो बांधे हैं वो तो अपने उदय काल में आएंगे, वो उदय आए इसके पहले ज्ञान प्राप्ति हुई बीच में, तो फर्क क्या हुआ कि उदय तो जैसे अज्ञानी को आता है वैसे ही ज्ञानी को आता है। इसलिए उदय की परिस्थिति में तो सब सरीखे दिखते हैं, जैसे दूसरे लोग दिखते हैं वैसे वही दिखते हैं, फर्क कहाँ होता है कि उसके रस के परिणाम में, परिणाम के रस में फर्क पड़ जाता है। अज्ञान दशा में जागृति नहीं होती, मैं आत्मा हूं मेरे अशांति का ये कारण बनता है, मेरे कर्मबंध का कारण बनता है, वो भान नहीं रहता है। और जागृति के काल में भान रहता है कि मैं आत्मा हूं, मेरी शांति मुझे बनाई रखनी है, और इसलिए मुझे कहीं रस, वो जागृति के कारण से मैं आत्मा हूं, वो जागृति के कारण से रस पैदा ही नहीं होता, उत्पन्न ही नहीं होता। हाँ, अभिप्राय तो पहले मुमुक्षु की भूमिका में बदल जाता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। क्या? मैं मनुष्य नहीं, मैं आत्मा हूं, और मेरा सुख मेरे में है, मेरी शांति मेरे में, मेरे से उत्पन्न होती है, बाहर से सुख शांति आती नहीं। इसलिए सुख बुद्धि का जो अभिप्राय है वो बदल जाता है, और आधार बुद्धि होती है कि मैं इसके आधार से जीता हूँ, वरना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। आधार बुद्धि बदल जाती है कि मेरा जीवत्व शक्ति के कारण से मैं हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाला हूँ, मैं कभी मरने वाला हुई नहीं। तो अनेक प्रकार के भय मृत्यु आदि का भी छूट गया। इस प्रकार से जितने भी विपरीत अभिप्राय थे, वो स्वरूप की पहचान के काल में सब विपरीत अभिप्राय खत्म हो जाते हैं। उसके पहले एक आत्म जागृति आती है, ऐसा यहां तो बोला है कि अगर तीव्र भावना हुई मुक्त होने की, दुख से मुक्त होने की तीव्र भावना हुई कि सांसारिक दुख से मुक्त होना ही है, और इस मुक्ति के मार्ग को, उपाय को बताने वाला कोई ज्ञानी पुरुष मिल गया, और उसको बात समझ में बराबर आएगी कि ऐसे मुक्त हुआ जाता है, तब से जागृति आ जाती है। उसको कहते हैं अंतर्भेद जागृति। क्यों? कि किसी एक क्षण से वो चालू होता है, इसी कोई फर्स्ट मोमेंट किसी कोई होती है कि नहीं होती है, बाद में तो करना नहीं पड़ता, सहज स्थिति हो जाती है। जैसे कोई नींद में सोया हुआ है, वो जागृत हो गया तो कोई एक क्षण में जागृत हुआ, फिर तो जागृत हो गया, जग गया, वो जग गया हमेशा के लिए। ऐसे जीव मोह निंद्रा में सोया हुआ है। इसमें सोया हुआ है, मोह निंद्रा में सोया हुआ है। इस ग्रंथ के सबसे पहला वचनामृत जो लिखा है श्रीमद् जी ने, वो वही लिखा है सबसे पहला। ये जो काव्य पूरा होते हैं ना, पेज नंबर 3, पुष्पमाला, माला इसलिए 108 वचन लिखे हैं उन्होंने, इसलिए माला में 108 पारे होते हैं ना, इसलिए उन्होंने 108 वचन लिखे हैं। उसमें पहला वचन ये लिखा है, क्या लिखा है, रात्रि व्यतिक्रमी गई। वो कहेंगे रात तो पूरी हो गई है, भोर भई है, क्या हो गई, भोर भई, प्रभात हुआ मैंने, भोर भई, गुजराती में प्रभात कहते हैं, हिंदी में भोर कहते हैं। रात्रि पूरी हुई, भोर भया, निंद्रा से मुक्त हुआ, कौन सी निंद्रा से, भोर निंद्रा से, उसको भाव निंद्रा कहते हैं। ये जो निंदा आती है वो तो द्रव्य निंद्रा है, क्योंकि कर्म का उद्देश्य आती है वो, ये मोह है वो भाव निंद्रा है। उस भाव निंद्रा को नाश करने का, टालने का प्रयत्न करना, प्रयत्न कीजिएगा, ऐसा कहते हैं। तो ये अंतर्भेद जागृति में क्या होता है कि ये जो मोह है उसमें फर्क पड़ जाता है, टूटता है तो आगे जा करके ज्ञान दशा में, लेकिन फर्क इतना पड़ता है कि मोहवश अजागृति जो रहती है वो नहीं है। भीतर में एक जागृति आई कि ऐसे ऐसे परिणामों से मेरी अशांति होती है, वो परिणाम मैं अभी नहीं करना चाहूंगा। ऐसी जो जागृति आ गई तो परिणाम हो, लेकिन निरस हो गया परिणाम, वो सूचित करता है, वो एक इंडिकेशन है कि इसका मोह है वो गल गया है, कमजोर हो गया है। मोह मिटता है इसके पहले कमजोर होता है। मोह एक बहुत आत्मा को दुखी करने वाला बलवान परिणाम है, मामूली नहीं है, इसका बल बहुत है। मोह छोड़ना आसान नहीं है, मोह छोड़ना आसान नहीं है। तो कोई भी बलवान को अगर खत्म करना हो तो पहले उसको कमजोर किया जाता है, ये काम करने का तरीका है, योजना है। तो मोह बलवान है और मोह के कारण से इस जीव अनंत काल से संसार में जन्म मरण करके, परिभ्रमण करके दुखी हो रहा है। इस मोह को पहले कमजोर किया जाता है। ये कमजोर कैसे होता है कि जब आत्म जागृति आ जाती है, तो आत्म जागृति कब आती है कि मुक्त होने की तीव्र भावना के कारण से आती है, उसी को कहते हैं आत्मयोग, यानी आत्म कल्याणकारी योग। इस पत्र पर आगे अपने स्वाध्याय हो चुके हैं, करीब 3 घंटा चला है, 2 या 3 घंटा चला है, वो भी टेप रिकॉर्ड में होकर के 5 घंटा चला था। अच्छा, तो ये तो किताब के रूप में छपेगा, तो इसका सब प्रोसेस चल रहा है छपने का। तो इसको नाम हेडिंग दिया है आत्मयोग, इस किताब का नाम के टाइटल क्या दिया है, आत्मयोग। आत्मयोग मैंने आत्म कल्याणकारी योग, योग मैंने संयोग। कोई ऐसा संयोग बन जाता है कि जीव को ये चीज दिखाने वाला मिलता है और खुद की भावना हो जाती है, दो बात साथ में होती है, एक नई जागृति पैदा हो जाती है। ये जागृति आने से वो मोक्ष के समीप हो जाता है। अल्पकाल में कितना बड़ा फायदा हो गया देखो, अनंत काल की, भविष्य के अनंत काल की कमाई करने का एक योग बैठता है, एक संयोग बैठता है, बस उतनी सी बात है। कितनी सी बात है कि बस मेरे को भी कोई संसार के दुख नहीं चाहिए और वे अभी जागृत रहना है, बस इस भावना से मोह कमजोर हो जाता है। अंतर से, आत्मा में से ये भावना उठनी चाहिए, अंतर आत्मा में से, बस इसका काम हो गया, ऐसा कहते हैं। भूतकाल कैसा भी खराब हो, कोई जरूरी नहीं है। बताइए ना महावीर स्वामी का दृष्टांत, कितना भूतकाल खराब था। आदिनाथ भगवान का विरोध किया, गालियां दी, और जैन धर्म का जब जब वो मनुष्य हुए तब तब जैन धर्म का विरोध का झंडा उठाया, नेतृत्व लिया है उन्होंने। पूर्व भाव में विरोधियों का नेता बन करके धर्म का विरोध किया है और नरक में गए। बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा। भूतकाल कितना भी कैसा भी हो, लेकिन जीव जब पलटना चाहता है, सलटना चाहता है, आत्मा में शक्तियाँ इतनी हैं, ताकत उतनी है कि सबकी सफाई हो जाती है। जितना भी पूर्व भव में विरुद्ध परिणाम किए, अपराध किए, उल्टे परिणाम किए, बहुत कर्म बांधे, सबको ये आत्मकल्याणकारी भावना सबका सफाई कर देती है। बहुत बड़ी ताकत है उसमें, ये बहुत ताकत वाली चीज है। शास्त्र में तो आत्मा की ताकत दिखाने के लिए दृष्टांत दिया है कि जब कोई सिंह सो जाता है, नींद में आ जाता है, तो हजारों मच्छर इसके पर बैठते हैं। कितने बैठते हैं? हजारों मच्छर बैठ जाते हैं। लेकिन जब वो जागृत होने की तैयारी होती है, इसके पहले करवट बदलता है, तो मच्छर भगने लग जाते हैं, क्योंकि सिंह के आगे मच्छर की कोई ताकत नहीं। ऐसे आत्मा अंदर से जागृत हो गई कि मेरे को भी परिभ्रमण नहीं करना है, मेरे को दुखी नहीं होना है, तो ये कर्म रूपी मच्छर बहुत से बैठे हुए हैं, वो भगने लग जाते हैं। ऐसे दृष्टांत दिया है शास्त्र में। तो बात वैसी है कि आत्मा में ताकत बहुत है, शक्ति तो बहुत है, लेकिन अपनी ताकत को भुला हुआ है, तो मान लिया कि मैं तो दीनहीन हूँ, मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे में कोई जोर नहीं, मैं तो कमजोर हूँ, वैसी बात मूल में नहीं है। हाँ हाँ अच्छा है, चलो वो बात ले ले। पत्रांक 108, तेईस साल की उम्र में श्रीमद जी ने ये पत्र लिखा है। ये जीव, तू भ्रमित मत हो, तुझे तेरे हित की बात कहता। बहुत करुणा से, यानी बहुत प्रेम से, वात्सल्य से कहते हैं, हे जीव तुम भ्रमित मत हो ना, तुम्हारे कल्याण की तुम्हारी है, आत्मा के भीतर में सुख है, बाहर खोजने से मिलने वाला नहीं, मिलेगा नहीं। ये सारी दुनिया से कुछ दूसरी बात है। लोग सुखी होने के लिए बाहर में प्रयत्न करते हैं, अनेक प्रकार के सुख के साधन एकत्रित करते हैं, जुटाते हैं, और टेंशन में और ज़्यादा आ जाते हैं और टेंशन में आते हैं। और सबसे बड़ा दुख टेंशन का है, इतना होता है खुदकुशी कर लेते हैं टेंशन के वसात, सुसाइड कर लेते हैं लोग। कैसे कैसे लोग सुसाइड करते हैं, जो बहुत संपन्न लोग होते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं टेंशन के मारे। ये सबसे बड़ा दुख है जो मृत्यु को भी गौण कर देता है, मृत्यु को पसंद कर लेता है लेकिन टेंशन में रहना नहीं चाहता। ये तो जग प्रसिद्ध बात है। तो कहते हैं कि बाहर खोजने से तो तुमको टेंशन आएगा, तनाव बढ़ेगा, सुख तो भीतर में है और तुम खोजते हैं बाहर, या है ही नहीं तेरा सुख। अंतर का सुख अंतर की, भीतर का सुख भीतर की समश्रेणी में है। स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थों का विस्मरण कर और आश्चर्य को भूल। क्या कहते हैं कि भीतर का सुख भीतर में परिणाम ले जाने से होता है। किस परिणाम में है सुख, भीतर के जो सुख है, जहां सुख है वहां परिणाम जाएगा, वहां तो सुख मिलेगा, उसको समश्रेणी कहते हैं। समश्रेणी क्यों कहते हैं कि बाहर जो परिणाम जाते हैं वो विषम श्रेणी वाले हैं। श्रेणी मैंने परंपरा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो लाइन लग जाती है भावों की, जितने परिणाम बाहर जाते हैं इतने विषम हैं। विषम क्यों, कि वहां परिणाम खींचते हैं, खींचते हैं तो तनाव आता है, और परिणाम भीतर में समाता है तो शांति बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है। इसलिए भीतर का सुख भीतर के परिणाम की श्रेणी में परंपरा में है। ऐसी स्थिति होने के लिए, सम श्रेणी वाली स्थिति होने के लिए बाह्य पदार्थ को भूल जा, विस्मरण कर, मैंने भूल जा और आश्चर्य को भूल, मैंने इसकी महत्ता को छोड़ दे। महत्ता मैंने उसकी विशेषता, सुख के लिए वो आम काम आने वाला है ऐसी मुख्यता जो होती है, महत्ता नहीं समझते, अधिकता आती है ना, इम्पोर्टेंस। लोग कैसे बात करते हैं, देखो वहाँ तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ होती है, ऐसे ऐसे मकान होते हैं, ऐसे ऐसे फुहारे होते हैं, वैसे वैसे, वो सब महत्ता वाली बात है ना, वो आश्चर्य बताते ना। महत्ता में क्या होते हैं, आश्चर्य करते हैं, आश्चर्य से बात बोलते हैं, देखो कैसा होता है, देखो कैसा होता है। ये सब भूल जाए, वहाँ कोई सुखी होने का रास्ता है ही नहीं। हाँ, एक जगह हमने डायरी में नोट किया है कि जगत में वैविध्य, मैंने विविधता तो बहुत है, आवाजों की दुनिया है, किताबों की दुनिया है, कलर की भी एक दुनिया है, स्वाद की भी, खाने पीने की भी एक दुनिया है। ये इंटरनेशनल होटल्स होते हैं कि हमको इटालियन पिज्जा खाना है, वो बना देगा, इसके कुक के हजारों का पगार होता है। अब बोले कि हमको फ्रांस की वही चीज खानी है तो वो बना देगा। ये खाने पीने की, स्वाद की भी एक दुनिया है, आवाज की भी एक दुनिया है, इतने संगीत के साधन हैं, इतने आवाज हैं अलग अलग प्रकार। विविधता, पांचों इंद्रियों का विषय की विविधता बहुत है, सुगंधों की भी दुनिया है, ये सेंट मेंट तरफ जो होते हैं इसकी भी एक दुनिया है, इनके बड़े बड़े स्टोर लगे हैं, इतनी बोतल का सैकड़ों हजारों रुपये लगते हैं, बोतल इतनी होती है। ये सब बहुत है जगत में, लेकिन उसकी महत्ता नहीं आनी चाहिए। उसको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। क्यों? कि मेरे से वो शून्य है, मेरा अस्तित्व वहां ही नहीं, इस पदार्थ में मेरा अस्तित्व नहीं और मेरे अस्तित्व में वो पदार्थ कभी आ सकता नहीं, इसलिए मेरे से वो शून्य है। जब मेरे से शून्य है तो मेरे को रस आने का क्या कारण है? और जितना मैं रस लेता हूं उतना अधिक मैं टेंशन में आता हूं, अधिक मेरे परिणाम खींचते हैं, आकुलता बनी रहती है। और मैं करता हूं सुख शांति के लिए और होती है आकुलता। देखो परिणाम करते हैं, प्रयास करते हैं सुख शांति के लिए और बनती है आकुलता। क्यों? कि बाहर में तो सुख है नहीं। किसी भी जड़ परमाणु चाहे जैसी अवस्था को धारण करे, तो बदलते हैं ना परमाणु भी, अवस्था बदलता रहता है, अपने आप बदलता है। मकान पुराना अपने आप होता है, कपड़ा पुराना अपने आप होता है, कागज पुराना अपने आप होता है कि नहीं होता है? वो अपने आप अवस्था कोई भी प्रकार की धारण कर ले, उसमें सुख नहीं है, क्योंकि वो जड़ है। जड़ में सुख नहीं है क्योंकि सुख की जो गुण यानी शक्ति यानी प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो वहां है ही नहीं। इसलिए सुख वहां है नहीं तो आएगा कहां से? जो वहां है नहीं वो आएगा कहां से? गुरुदेव कहते थे कि जिस चीज में तुम्हें सुख लगता हो, जैसे कि मिठाई है, मिठाई के एक एक परमाणु को तुम गौर से देखो, ध्यान से देखो, वहां सुख नाम की चीज क्या है? क्या तुम्हारी कोई कल्पना है? क्योंकि खाते खाते तुम परेशान हो जाते हो, बंद कर देते हो खाते खाते। पहले कल्पना हो गई, बाद में कहां गई? अगर वास्तविक सुख था तो जाता नहीं, खत्म होता नहीं। तो जड़ है, परमाणु है, जिसमें कोई सुख गुण नहीं, सुख की अवस्था नहीं, सुख देने का कोई धर्म नहीं, वो भी परमाणु है। देखो तो जब परमाणु में सुख नहीं है, वो सुख वहां से आएगा कैसे? एक आदमी हजारों रुपयों का बनाया हुआ पलंग में बिस्तर में सोता है, अच्छे से अच्छा बिस्तर, और एक मजदूर है वो बिना कुछ बिछाए हुए सो जाता है, अब नींद जो दोनों को आई, जबकि हजारों के बिस्तर में सोने वाले को जल्दी से नहीं आती, जल्दी से तो उनको ही आती है जो मजदूरी करता है, मेहनत करता है, उसको ही आती है। मान लो कि दोनों को आ गई, तो दोनों को जब नींद आई तो दोनों उपाधि रहित हो गए उस वक्त। नींद में तो कोई उपाधि है ही नहीं, गहरी नींद आती है, कोई उपाधि तो है ही नहीं। तो जो पलंग में बिस्तर में सोया है, उसको ज्यादा नींद का सुख मिलता है और जो नीचे सोया है उसको कम मिलता है, ऐसा बनता है क्या? दोनों को एक सा ही अनुभव होता है। अगर सुख बाहर से आता हो तो जिसने हजारों रुपयों का फर्नीचर बनाया उसको ज्यादा नींद आनी चाहिए और ज्यादा नींद का सुख मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये इस बात का सबूत है कि सुख बाहर से नहीं आता। हमारे मुनिराज हाथ में खुराक लेकर के झीमते हैं, ऐसे खाते हैं, और राजा महाराजा चांदी के सोने के बर्तन में खाना खाते हैं, या बहुत कॉस्टली क्रॉकरी समझ लो अपन, आजकल क्रॉकरी का यूज ज्यादा है और फॉरेन में बहुत कॉस्टली क्रॉकरी आती है, बहुत कॉस्टली, अपने को कल्पना ही नहीं है वो इधर, तो इतनी कॉस्टली क्रॉकरी वहाँ बनती है और होती है। इसमें कोई खाना खाता है क्या, कोई ज़्यादा सुखी हो जाता है इसमें खाने वाला? मैंने इसमें खाया, बस इसका अहंकार होता है और अहंकार की आकुलता होती है, क्योंकि कभी मान का अपमान हो जाता है ना। सोने चांदी के थाली में खाने वाले को जब ये थाली नहीं मिलती है तब दुख ज़्यादा होता है, अरे मेरी थाली किसने छीन ली, किसी ने छीन ली। लेकिन उस वक्त भी उसको सुख तो वहाँ से नहीं आता था, स्वाद तो सबको एक एक सा आएगा, हाथ में खाएगा उसको भी इतना ही, जो मीठा ही मीठा लगेगा, कड़वा ही कड़वा लगेगा और जो खारा है खारा लगेगा, जैसा है वैसा लगेगा, वो तो स्वाद जैसा है वैसा ही लगेगा। उसमें थाली वाली का तो कोई रोल नहीं है उसमें, कहने का अभिप्राय वो है कि सुख कहीं बाहर से नहीं आता, वो बात सही है, भ्रांति से लगता है कि सुख यहाँ से आया, लेकिन सुख बाहर से नहीं आता। ऐसी भीतर में परिणामों की श्रेणी लगना, एकाग्रता लगना बहुत दुर्लभ है, वो आसान नहीं है। वो बात आसान नहीं है इसलिए कि एक तो ये बात कहीं सुनने को नहीं मिलती कि बाहर में कहीं सुख नहीं है, भीतर में सुख है, सुनने को ही नहीं मिलती। इस विश्व में, पृथ्वी का गोला में करीब 595 करोड़ की आबादी है, करीब करीब 6 अरब हो गया, उसमें ये बात कुछ लोगों को तो सुनने को मिलती है, बाकी को कुछ सुनने में नहीं मिलती, मुट्ठी भर लोग हैं सुनने को। वो जो मुट्ठी भर है उसमें भी प्रयास करने वाले कोई एकल दोकल कोई एक दो विरल जीव मिलते हैं, ऊपर से जाता है। क्यों ऊपर से जाता है? कि निमित्ताधीन वृत्ति, जो भी निमित्त मिलता है, जिस बार का जिसका संग होता है, वृत्ति चलित हो जाती है, वृत्ति जो है वो विचलित हो जाती है, बाह्य परिस्थिति में परिणाम लग जाते हैं, सुनने वाले को भी लग जाता है, तो जिसको सुनना नहीं मिले उसको तो बेचारे का कोई अफसोस करना ही नहीं चाहिए, उनको तो बात ही समझ में नहीं आई, सुनने में नहीं आई, समझ में नहीं आई, तो उसका एक्सपेरिमेंट तो करे ही कब। जिसको सुनने को मिलती है उनको बाह्य परिस्थिति में विचलितता हो जाती है, और ऐसा नहीं होने के लिए गंभीर उपयोग, मैंने बहुत गंभीरता से सिंसियरिटी से सावधानी रखनी पड़ती है। क्या सावधानी? बहुत सिंसियरिटी पूर्वक होती है, गंभीर, गंभीर मैंने सिंसियर। यहाँ से एक मुद्दा और मिलता है कि जो भी कोई काम में सक्सेस होता है उस काम के पीछे इसकी सिंसियरिटी होती ही है, तब सक्सेस होता है। होता है एक प्रैक्टिकली है कि नहीं है? तो जिसको संसार के सभी दुखों से छूटना है उनको इस विषय में कितनी सिंसियरिटी होनी चाहिए, कि जितना काम बड़ा है उतनी सिंसियरिटी भी बड़ी होनी चाहिए। हमको थोड़ा दुख से छूटना है तो कम सिंसियरिटी से चलेगा, लेकिन पूरा दुख से छूटना है तो पूरा सिंसियर होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ऐसे काम करने के लिए पूरी पूरी गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता से सावधानी आनी चाहिए। इस विषय को लाइटली नहीं लेना चाहिए, हल्के से नहीं लेना चाहिए कि चलो ये तो एक धर्म की बात है, होती रहती है, ऐसे नहीं लेना। हमारे यहाँ धर्म का महत्व बहुत कम हो गया, इस विषय में जांच तलाश करते नहीं। कोई भी चीज खरीदने को जाएंगे, जांच तलाश पूरी करेंगे। रोटी सेकने के लिए मिट्टी की तावड़ी बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, तवा, मिट्टी का, वो भी लेते हैं तो उसको टकोरा मार करके लेते हैं, थोक करके लेते हैं। क्यों? कि आवाज़ से पता चल गया है कि बारीक से बारीक कोई दरार होगी तो मालूम पड़ जाएगा। इतनी परीक्षा करके लेंगे। एक दो रुपया की चीज़ जो होती है उसमें भी हम इतनी दरकार करते हैं, सावधानी करते हैं, और धर्म के लिए मंदिर जाते हैं या कुछ भी, किसी को भी सुन लेते हैं या किसी कहीं भी चले जाते हैं, भाई हमारे महाराज हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे बस सुन लिया या मंदिर चले गए, हो गया धर्म। कोई दरकार नहीं, परीक्षा नहीं, कोई सावधानी नहीं। मतलब एक दो रुपया की चीज़ जितनी भी सावधानी नहीं तो वो कितनी चीज़ सस्ती हो गई, देखो, जो सबसे महंगी है वो सबसे सस्ती बना ली। और अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों की ये हालत है। बस फिर इसका फल कहाँ से मिलेगा? श्रीमद जी कहते हैं कि अगर तुझे सुख चाहिए और दुखी नहीं होना है तो बहुत सीरियसली तुमको ये काम करना है, बहुत गंभीरता से ये काम करना है। ऐसे ऊपर ऊपर से चलने से ये काम होने वाला नहीं है। ये गंभीरता आई तो अंतर्भेद जागृति आई। ये अनुसंधान है अपने 569 जो चल रहा है उसके साथ इसका अनुसंधान है कि ये जागृति है, गंभीरता आई, मुझे कैसे अशांति होती है, क्यों होती है, कि मैं जितना बाह्य पदार्थ, बाह्य परिस्थिति पर तुल देता हूँ, वजन देता हूँ, अधिकता देता हूँ, महत्ता देता हूँ, उतने मेरे परिणाम खींचते हैं, उतना टेंशन तनाव आता है, उतनी मेरी अशांति बनती है। जो पदार्थ से मेरा भिन्नता, भिन्नपना है, वो कभी हमेशा मेरे साथ रहने वाला नहीं है, इसमें से कोई सुख आने वाला नहीं है, मेरे सुख का कारण नहीं है, मुझे इतना तुल दे नहीं देना चाहिए था। इस तरह से बहुत लंबा चौड़ा ये पत्र है, पूरा लेने में तो 2 घंटा और चाहिए, लेकिन जो मुद्दे की बात थी उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो बोलते हैं वो ले लिया। वो रेफरेंस लेने के लिए बात थी। यहाँ कहते हैं कि यदि कोई आत्मयोग बना तो, आत्मयोग बना माने क्या, कि आत्मकल्याण की भावना हुई, आत्म शांति पाने की भावना हुई, और ऐसा कोई सत्संग मिल गया, सत्संग में ये बात बिताने वाला, दिखाने वाला मिल जाता है, उसको कहते हैं आत्मकल्याणकारी योग। यदि ऐसा कोई आत्मयोग बन गया तो इस मनुष्य भव का मूल्य किसी भी रीति से नहीं हो सके इतना है, यानी कोई टर्म में ये मनुष्य भव का मूल्य नहीं होगा, इतना मूल्यवान ये भव है। क्यों? कि ऐसा योग नरक में नहीं होता, पशु गति में नहीं होता, देव गति में नहीं होता, मनुष्य गति में ये योग ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, हो सकता है। इसलिए अगर ऐसा कोई आत्मकल्याणकारी योग बन गया तो इस मनुष्यपना, जो मनुष्य हम हुए, मनुष्यपना प्राप्त हुआ इस जीव को, उसका मूल्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सके उतना है, क्योंकि इसकी बराबरी में कोई पदार्थ ही नहीं है। किस पदार्थ से इसका मूल्य किया जाए? संसार में पैसा, सोना, हीरा, जोरात सबसे मूल्य, प्लेटिनम जो भी है, लेकिन कोई टेंशन को दूर नहीं कर सकता, हाँ कोई नहीं दूर कर सकता, कोई मृत्यु से नहीं बचा सकता, कोई शरीर के रोग से पीड़ा से नहीं बचा सकता। अगर हम सभी प्रकार के दुख से मुक्त हो सकते हैं तो ये आत्मकल्याणकारी योग का मूल्य सबसे अधिक है, वो समझाने की जरूरत नहीं है। बहुभाग प्राय, मैंने बहुभाग, मनुष्य देह बिना ऐसा आत्मयोग बनता नहीं है। देखो चार गति है संसार में, देव पशु नारकी और मनुष्य, उसमें तीन गति में ऐसा योग बहुभाग नहीं बनता। कभी किसी को बनता हो अलग बात है, बहुभाग नहीं बनता। जैसे कि देव और पशु भगवान के समोह शरण में जाते हैं, लेकिन सब नहीं जाते, कुछ एक जाते हैं और संख्या बहुत बड़ी है। देवों की संख्या मनुष्य से बहुत बड़ी तादाद में है, पशु पक्षियों की संख्या मनुष्य से बहुत बड़ी तादाद में है, भगवान के समूह शरण में तो बहुत कम लोग जाते हैं, जबकि मनुष्य की संख्या ही बहुत है, क्योंकि मनुष्य भाव मिलना ही दुर्लभ है। बहुत बहुत सरलता होवे तो मनुष्य भाव मिलता है, सरलता के कारण से मिलता है, वैसे नहीं मिलता। और उसमें आत्मकल्याणकारी योग कोई बैठ जाता है, बन जाता है, तो इसका मूल्य बहुत है। अगर ऐसा योग नहीं बना, आत्मकल्याण के दिशा में हमने कुछ नहीं किया, तो इस मनुष्य भव का मूल्य एक कौड़ी जितना भी नहीं है। फूटी कौड़ी कितनी? फूटी कौड़ी जितना भी नहीं है। क्यों? खा खा के मर जाते हैं लोग। सुबह उठते हैं, दो तीन टाइम खाना खाते हैं, रात्रों को सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, रात्रि को सो जाते हैं, वैसे ही मर जाते हैं। तो ऐसे तो पशु भी खाना खाते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं, जिसमें बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, विशेष विचार नहीं है, विचार शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है, उनकी जो हालत है वही हालत मनुष्य की हो गई। सब खाते पीते सोते मर जाते, खाते पीते सोते मर जाते हैं। आत्मकल्याण के विषय में जो विवेक करना चाहिए, जो बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, वो नहीं किया, तो पशु गति में ये बुद्धि सिकुड़ जाती है, कुदरत उसको वो चांस जल्दी से नहीं देती। वो कहते हैं कि प्रायः बहुभाग मनुष्य भव के बिना ऐसा आत्मयोग बनता नहीं, ऐसा जान करके अत्यंत निश्चय करके, मैंने बलवान निश्चय करके, हाँ ऊपर ऊपर से ढीला पोछा निश्चय नहीं करना है। चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता आ जाए, हम इस मार्ग से विचलित होने वाले नहीं हैं। ये हट नहीं है, ये जिद नहीं है, ये असरलता नहीं है, ये वक्रता नहीं है, ये निश्चय का बलवान पणा है, मक्कमता है, दृढ़ता है। जो दृढ़ता है परमार्थ मार्ग की, आत्मकल्याण की जो दृढ़ता है, वो सद्गुण है, अवगुण नहीं है, वो सद्गुण है। और बाह्य प्रसंग में कोई हट करना, जिद करना, वो अवगुण है। दोनों में फर्क है, मक्कमता तो दोनों में है, लेकिन एक सद्गुण है, एक दुर्गुण है। तो कहते हैं कि अत्यंत निश्चय करना, मैंने बलवान निश्चय करना, कि कोई भी प्रतिकूलता आ जाए या कोई भी प्रतिकूलता देने वाला आ जाए, हमारे आत्मकल्याण के मार्ग से विचलित होने वाले नहीं हैं, ऐसा अत्यंत निश्चय करके, इसी देह में, मैंने इसी वर्तमान मनुष्य भव में आत्मयोग उत्पन्न करना चाहिए, आत्मकल्याणकारी योग उत्पन्न करना चाहिए, यानी आत्मकल्याण की भावना बना लेना चाहिए, और आत्मकल्याण के विषय में जहाँ भी सत्संग मिलता हो या जैसा उपाय दिखाया जाता हो उसका संग कर लेना चाहिए। दो बात से आत्म ये कल्याणकारी योग बनता है और मनुष्य भाव में ऐसा योग बना लेना चाहिए, प्रयास करके भी बना लेना चाहिए। अगर हमारे घर पे नहीं हो तो जहाँ भी हो हमको ये प्रयास करना ही चाहिए। सत्संग के लिए इसलिए प्रयास किया जाता है क्योंकि वहाँ ये बात हमको समझ में मिलती है और हमारी भावना बलवान होती है, और हमारा भावना बलवान होती है तो ये आत्मजोग आत्म कल्याणकारी योग बैठता है, हमको आत्म जागृति आती है, आत्म जागृति आती है तो हम मोक्ष के समीप चले जाते हैं, ये बात बनती है। इस तरह से यहाँ इतनी बात कह करके फिर और भी आगे अच्छी अच्छी बातें कही है इस चिट्ठी में। अपने तो आगे 5 घंटा चली ही है और यहाँ तो अभी इससे ज़्यादा कुछ चल जाएगा, 3 घंटा तो हो ही गया है, तो आज का तो समय समाप्त हो रहा है। आगे का विषय कल के स्वाध्याय में लेंगे।